हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है।
आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है।
आपका 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 साथ है बाबा। रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। ऐसी सुंदर समझ की दी हमें सौगात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है,
ओम शांति। ब्राह्मणों के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, तो आज एक परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिए कि जो स्पीकर आने वाले थे वो नहीं आ पाए, तो उसके जगह पे हमारे स्टेपनी ब्राता सुशील भाई जी आ जाए हैं। आपको परिचय देना जरूरी है अभी आपको, ठीक है? तो आज बहुत सुंदर विषय पर, उड़ता पंछी विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय सुशील भाई जी। तो सुनते हैं समय नहीं लेते हुए जल्दी भाई जी से। ओम शांति।
ओम शांति। अचानक एवरेडी और बहुत काल का अभ्यास, इसलिए हम उनको अभी 5 मिनट पहले ही फोन किया कि ऐसे ऐसे चेंज हुआ है। तो अभी गीत भी बजा, आपका साथ है बाबा तो हर बात अच्छी है। तो आज का जो विषय है उड़ता पंछी, हम सभी बाबा के बच्चे उड़ते पंछी हैं। जो भी बंधन थे उन बंधनों को काटने के लिए बाबा ने हम सबको अस्त्र शस्त्र तो दिए हैं, अब उनका प्रयोग करना है, उपयोग करना है अपने जीवन में, कि कौन कौन से ऐसे बंधन हैं जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनते हैं या जो उड़ान नहीं भरने देते हैं, और उनको कैसे काटना है। तो आज ही बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिए, उड़ता पंछी बनने के लिए क्या करना है। आज की मुरली में था, हाँ, अनादि संस्कार हमारे हैं ही स्वतंत्रता के, क्योंकि जब हम अपने घर में हैं तो स्वतंत्र हैं। घर में होते हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है, किसी का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है, अधिकार अपना ही होता है। तो हमारे अनादि संस्कार स्वतंत्रता के हैं, और वो अनादि संस्कारों से बाबा ने हम सबको अच्छी तरह से परिचित भी कराया, एहसास भी कराया, अनुभूति भी कराई, और उनको कैसे अपने जीवन में अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना है, जीवन में लाना है, वो भी हम सबको बाबा ने ये सब बातें बताई हैं। एक बार एक राहगीर था, यात्रा पर जा रहा था, लंबी यात्रा थी। जाते जाते बीच में एक जंगल आ गया और जंगल की थोड़ा सा क्रॉस करके फिर एक घर दिखाई दिया उसको। तो वहाँ उसने अपना आश्रय लिया रात को, एक रात रुकने के लिए। तो जोर जोर से उसको आवाज़ आ रही थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो उसकी नींद खुली तो देखा उसने एक तोता पिंजरे में कैद है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता, अर्थात मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो उस राहगीर को दया आई, उसने पिंजरे को खोला और तोते को पकड़ा। लेकिन जैसे तोते को पकड़ा तो उसको वो चोंच मारने लगा। तो एक तरफ तो मुख से तोता कह रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता, लेकिन दूसरी तरफ से वो पिंजरे से बाहर नहीं आना चाह रहा है। फिर भी उस राहगीर ने उसको जबरदस्ती निकाल के उड़ा दिया आसमान में। अगले दिन वो राहगीर तो सो गया, अगली सुबह जब उठता है तो फिर से आवाज आती है उसको स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो देखा तोता फिर से पिंजरे में अपने आप ही आके बैठ गया है। तो हम भी इसी तरह के पंछी हैं कि बाबा हमको स्वतंत्र करने के लिए युक्तियां बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वयं ही इस देह रूपी पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अर्थात सारा दिन देह की स्मृतियां, देह के संबंध, देह के संस्कार, जो भी देह से संबंधित हमारा अंदर हमने संसार बसा के रखा हुआ है, वही चिंतन चलता रहता है। जबकि बाबा कहते हैं सो चिंतन करो अनादि संस्कारों का, सवेरे से लेकर रात्रि तक सारा खेल हमें अपने संस्कारों से ही करना पड़ता है। लेकिन हमारे अपने संस्कार कौन से हैं? अनादि आदि संस्कार है। जो ये शुद्ध संस्कार है ये हमारे नहीं है, ये किसके संस्कार हैं? ये माया रावण के संस्कार हैं, लेकिन हम उनको ही अपना समझ के बैठ गए हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं इमर्ज करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। तो उसकी अनुभूति हमको अब भी करनी है इसी लाइफ में। जो भी आदि संस्कार हैं, देवताई गुण, आज भी मुरली में था दैवी गुण धारण करो, अवगुणों को छोड़ दो, अपने अंदर के भूतों को निकालो। तो ऐसे कौन कौन से भूत हैं जो हमारे अंदर में बैठे हैं? क्योंकि अंत समय में जो भी पेपर आएंगे, बहुत सारे पेपर होंगे, लेकिन एक सबसे कड़ा पेपर जो होगा वो स्वयं के संस्कारों का पेपर होगा। उससे हम पीठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आदत हमको पड़ी है वही हमको बार बार खींचेगी। दूसरे पेपर आएंगे, विकराल परिस्थितियां आएंगी, प्राकृतिक आपदा आएंगी, हेल्थ का इशू होगा, लेकिन कड़े संस्कार जो हमारे अंत में हमारे संस्कार, जैसे सुनते भी हैं मुरलियों में कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको अगर खाने की आसक्ति है, संस्कार है, तो वो ही चीज याद आ जाएगी। तो जो हमने लंबे समय से अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया है, जिन संस्कारों का चिंतन किया है, जिन संस्कारों को अपने अनुभव में लाया है, वो ही संस्कार हमारे अंत में हमारे सहयोगी बनेंगे। और उसके लिए हमें गहरे तल से प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे दैवी संस्कार कौन से दैवी संस्कार हैं, उनका हमें अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए। केवल ज्ञान नहीं, उनकी अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे दैवी संस्कार कौन कौन से हैं। तो उसका गहरे तल पर एक्सपीरियंस करना है। वैसे पहले भी बताया था देवताओं के संस्कार, लेकिन उन संस्कारों तक पहुंचने के लिए स्वयं को बहुत सारी बातों से किनारा करना पड़ेगा। वर्तमान में माया भी अलग अलग रूप से आती है, भिन्न भिन्न रूप से आती है। माया भी बड़ी होशियार है, माया भी सर्वशक्तिवान है, कम नहीं है। अगर हम पुरुषार्थ की नई विधि ढूंढते हैं तो माया भी अपने पुरुषार्थ का नया तरीका ढूंढती है। इसलिए स्वयं को देखना है कि कौन कौन से ऐसे संस्कार अभी भी हैं जिन संस्कारों से मैं धोखा खा रहा हूं। हम अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप बेरहमी कर रहे हैं स्वयं के ऊपर, तो ऐसे संस्कारों से छूटने के लिए स्वयं को ही करना पड़ेगा। अदरवाइज हम जितनी मर्जी क्लासेस सुन लें, जितना मर्जी योग कर लें, जब तक हमने स्वयं के संस्कारों का फेस नहीं किया, सामना नहीं किया, उन पर गहराई से चिंतन नहीं किया, तब तक हम उड़ नहीं सकेंगे, तब तक हमारे पंख उन संस्कारों से बंधे रहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से संस्कार है वो स्वयं को ही जांच करनी है। उड़ता पंछी बनना है तो स्वयं ही डालियों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा अगर छुड़ाएगा तो थोड़े समय के बाद फिर हम वहीं बैठ जाएंगे, जैसे गंगाराम तोते पर नहीं, गंगाराम नल पर नहीं बैठना, लेकिन वो फिर भी बैठ जाता था। तो ऐसे हमको गंगाराम नहीं बनना है, तो क्या बनना है? उड़ता पंछी बनना है। तो अपने आदि अनादि संस्कारों की सूची होनी चाहिए हमारे पास में, कौन कौन से अनादि संस्कार हैं या आदि संस्कार हैं। कौन कौन से हैं आदि संस्कार, कौन कौन से हैं? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, गुण, और बाकी जो प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में आने चाहिए, धैर्यता, हाँ, जितने भी ज्ञान, गुण, शक्तियां हैं ये प्रैक्टिकल हमारी व्यवहारिकता में आते हैं। हाँ जी, मधुरता, सहनशीलता। तो जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं तो बहुत धैर्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्यता नहीं है, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। संसार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, धैर्यवत होते हैं, उनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, लेकिन उन संस्कारों से भी हमको सीखना है कैसे कितने धैर्यवत हैं। ऐसे संसार में कितनी महान विभूतियां हैं, कितना उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को खोया नहीं है। इतनी सफलता अगर प्राप्त की है तो धैर्य बनाकर रखा है। तो ऐसे हमारा जो यात्रा है, लंबी यात्रा है, ऐसा नहीं एक दो दिन की है, अंतिम श्वास तक हमारी यात्रा है। इसमें अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमको धैर्य बना के रखना है। आज नहीं तो कल विजय हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि स्वयं विजय का तिलक किसने दिया है? स्वयं भगवान ने दिया है। वो रोज हमारे मस्तक पर तिलक लगाता है, सदा विजयी भव। तो सवेरे सवेरे उठते अपने मस्तक पर तिलक लगाने हैं। कौन कौन से तिलक लगाने हैं? अब 21 तिलक बताओ। सदा विजयी भव, सफलता मूर्त भाव, और स्वराज्य अधिकारी भाव, और निर्विघ्न भाव, उड़ता पंछी भाव, विश्व कल्याणकारी भाव, सुख स्वरूप भाव। पिछली क्लास में बताया था कुछ नए सुमान होने चाहिए, उनमें कुछ और विशेषण जोड़ने, उनका श्रृंगार करना है थोड़ा। पहले कौन से सुमान बताए थे पिछली बार? बात गई, रात गई, बात गई, खत्म हो गई। वो दगता हुआ ज्वालामुखी हूं, सूर्य हूं, है ना, मैं परमात्म शक्तियों का अग्नि केंद्र हूं, नया सोमान। मैं परमात्म शक्तियों का पावर हाउस हूं, मैं परमात्म शक्तियों का लाइट हाउस हूं, मैं परमात्म शक्तियों का माइट हाउस हूं। तो ऐसे विशेषण जोड़ने हैं साथ में, और उन पर उनको देखना है, विजुअलाइजेशन करना है कि सचमुच मैं वो पावर हाउस हूं, वो सारी परमात्म शक्तियों की जैसे ऊपर से बरसात हो रही है, अग्नि की तरह बरस रही है, पानी की तरह नहीं है, अग्नि की तरह बरस रही है। बाबा कहते हैं योग अग्नि से ही तुम्हारे क्या होंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो भी सूक्ष्म रूप से अंदर में विकर्म है, अंदर में पाप कर्म है, उनके पाप के वाइब्रेशन है अंदर में, नस नस में समाये हुए हैं, उस नस नस में भी परमात्म शक्तियां समा जानी चाहिए। तो जब भी हम कोई भी सुमान लेते हैं तो उनको हमको एज इट इज याद नहीं करना, यह एज इट इज करना ही करना है, लेकिन उसके साथ हमको अपना चिंतन जोड़ना है। इसलिए बताया ना, अपनी घोर तो नशा चढ़े, क्योंकि अंदर में भूत बहुत गहरे तल पर बैठे हैं, उनको निकालना आसान काम नहीं है। जैसे एक बंदर होता है, बंदर कितना चंचल होता है, और उसको अगर 5-7 मधुमक्खी लड़ जाए, डंक मार दे, तो उसका क्या हाल होगा? और उछल कूद करेगा ना, और ऊपर से थोड़ा वो 2-4 घूंट शराब के पी ले, 2-4 पैग, उसकी हालत कैसी हो जाएगी? और ऊपर से फिर 8-10 आत्माएं प्रवेश कर जाए उसके अंदर, कैसा हो जाएगा वो? वैसे हमारे मन की हालत है, बैठते हम याद में, अभी एक बात आती उसको हटा देते हैं, फिर दूसरी बात आ याद आ गई उसको हटाया, थोड़ा मन एकाग्र हुआ थोड़ी देर में तीसरी बात आ गई, फिर मन एकाग्र हुआ चौथी बात आ गई। तो ऐसे बाबा कहते भूत तो अंदर में बैठे हुए हैं, तो मैं मास्टर भूतनाथ हूं, भूतों को भगाने वाला, वो हमारे सारे कंट्रोल में है। तो ऐसे सोमान जोड़ने हैं साथ में नए नए, है ना? हाँ जी, भूतेश्वर नाथ बाबा के मंदिर है ना, तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं ना। सारे संसार, ना केवल अपने भूतों को भगाने वाले बल्कि सारे संसार के भूतों को भगाने वाले मैं मास्टर भूतनाथ हूं, भूतनाथनी हूं। एक बार क्या हुआ, एक बार रात्रि भट्ठी कर रहे थे हम, 8-10 भाई बहने बैठे थे और एक डॉक्टर भाई थे साथ में, तो भाई लोग आगे आगे बैठे थे, बहने पीछे बैठी थी। तो रात का टाइम होता था नेचुरली, पूरा रात बैठना तो कभी कभी तो फिर शरीर भी नींद तो मांगता ही है। तो 12-1 बजे का टाइम था, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नींद का नशा आने लग पड़ा। तो जो भाई था डॉक्टर भाई, फिर वो कमेंट्री कराने लगे, तो वही सुमा लिया, मैं मास्टर भूतनाथ हूं, रात के 12-1 बजे का टाइम था। तो मैं संसार के सभी भूतों को भगाने वाला मास्टर भूतनाथ हूं। तो कमेंट्री कराते रहे, 10 मिनट के बाद पीछे देखा तो सारी बहनें गायब पीछे थे, वो तो उठ के चली। तो सब चीजें आएंगी आएंगी, लेकिन वो डरना नहीं, डट के बैठ जाना है। और वास्तव में जो आत्मा आती उसमें ताकत नहीं होती इतनी, क्योंकि हमने 4-5 आत्माओं से फेस तो किया है, उनमें ताकत नहीं होती, उनको ना प्यार चाहिए। अगर उनको थोड़ा भी अग्रेसिव मोड में आकर उनके साथ बिहेवियर करेंगे तो वो फिर अग्रेसिव हो जाती है एकदम, वो भी उनको बहुत प्यार चाहिए। एक बार की बात है शांतिवन में, मैं समझता हूँ 2014-15 की बात होगी, बाबा स्टेज पर मुरली चला रहे थे और एक बहन थी दिल्ली, और वो दिल्ली का सेवा केंद्र था एक, तो एक दुबली पतली बहन माता थी, तो 5 नंबर गेट के पीछे बैठे थे। तो माता तुरंत उठ के आई और वो बैरिकेटिंग जो लगी होती है उसको क्रॉस करके आगे जाने लगी। तो जो संभालने वाले भाई बहन होते तो वो तो आगे बैठे हुए थे, तो हम 5 नंबर गेट में बैठे थे उस समय, और हमारे साथ में एक भाई और था, तो हमने उसको पकड़ लिया, क्योंकि दूसरे तो पकड़ नहीं रहे थे। तो बहन को हमने इतने यहां से पकड़ लिया जोर से, आगे क्यों जा रहे हो? तो बोला मुझे बाबा से मिलने जाना है, जोर जोर से बोलने लगी वो। तो हमने कहा अगर जाना है तो बाहर से जाओ ना, इधर से थोड़ा बीच बीच में से क्यों जा रहे हो, क्योंकि एहसास तो हो गया कुछ तो है। तो फिर जैसे उसको पकड़ा हमने, तो इतनी ताकत थी उसमें कि बात मत पूछो, दुबली पतली थी लेकिन ताकत इतनी आ गई, तो हमको पता चल गया तो कुछ दूसरा है इसके अंदर में। तो हमने फिर दूसरे भाई को बोला, दोनों ने पकड़ के उसको फिर पीछे लाए, फिर उसको हमने चेयर पर बिठा दिया। फिर मेरे पास एक एप्पल था, हमने उसको वो भी दे दिया। फिर उसको थोड़ा उसको प्यार से समझाया कि बाद में जाना अभी ना, तो थोड़ा सा शांत हो गई। तो 5-7 मिनट मुरली चलती रही, सुनती रही बड़े प्यार से, और फिर से वो एकदम अग्रेसिव हो गई, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं मुझे जाना है, मिलना है मुझे स्टेज पर जाना है, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो फिर हम उसको दोनों पकड़ के बाहर लाए, और इतना जोर आ गया उसमें कि कंट्रोल में नहीं आ रही थी एकदम दोनों से भी। तो फिर हम जबरदस्ती उसको पकड़ के बाहर ले आए, और बाहर आके तो कुछ भाई बहने और भी अपने थे, तो जो दूसरे भाई बहने कहते थे कि इसको ना 2-4 जूते लगाओ। ये सुनने के बाद हमको इतना दुख हुआ अंदर से कि एक तो आत्मा वो दुखी है, और ऊपर से हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, हमारा ज्ञान कहाँ गया है। तो हमने तो खैर उसको जो उसने बोला वो भाइयों ने तो ठीक है, अपनी अपनी समझ के अनुसार होता है। फिर हमने उस बहन को सिर के ऊपर हाथ रखा, हालांकि वो बहन तो नहीं थी, जो दूसरी आत्मा थी वो। तो फिर हमने उसको बोला, देखो हम आपके भाई हैं ना, छोटे भाई हैं ना, जो हम कहेंगे तो ध्यान से सुनो। लेकिन वो बहुत मुश्किल से सुनना भी नहीं समझ रही थी ठीक मुनासिब। तो जो हमारे साथ में दूसरा भाई था उसने फिर थोड़ा पानी के छींटे वींटे डाले उसमें, तो थोड़ा सा उसको होश में आए, लेकिन आत्मा थी उसी में वो। तो फिर हमने उसको बोला है कि तुम कहाँ से आई हो, तो बोला मैं जयपुर से आई हूँ। वो बहन दिल्ली में थी, दिल्ली से थी, और निरेला सेंटर था दिल्ली का। तो फिर हमने पूछा जयपुर से कौन से गांव से आए, बोला नहीं बताऊंगी। तो मैं बोला तुम इसमें क्यों आई हो, बोला इसने पिछले जन्म में हमारे सारे परिवार को बहुत दुख दिया हुआ है, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो खैर हम वहां से फिर उसको पकड़ के बड़ी मुश्किल से मना के उसको बाबा के वहां तपस्या धाम में लेकर गए। तो तपस्या धाम में बैठी तो बाबा के सामने आंखें नहीं मिला रही थी वो, तो ऐसे करके बैठी है वो। फिर हमने उसको फिर से सिर पर थोड़ा सहलाया उसको, फिर उसको बताया कि देख हम तेरे भाई हैं, समस्या है, तुम जहां से भी आए हम तेरा सहयोग करेंगे, तुम चिंता नहीं कर, तुम बाबा से सामने दृष्टि लो। तो बोला नहीं मुझे नहीं देनी दृष्टि, मुझे इससे बदला लेना है, मेरा यही काम है। फिर उसको हम थोड़ा और सहलाया, देखो तुम इसमें आई है तो इसका भी टाइम वेस्ट, तुम अपने ऊपर भी और बोझा चढ़ा रही है, तुम्हारा ये जन्म भी खराब अगला जन्म भी खराब हो जाएगा, इसलिए अभी से तुम जिस स्थान पर आई है बहुत पुण्य भूमि है, भगवान की अवतरण भूमि है, दृष्टि ले ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, इसका भी कल्याण होगा। तो बड़ी प्यार से फिर उसको सहलाते रहे। तो थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खुली बाबा के सामने देखने लगी, 3-4 मिनट देखा होगा और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गई और फिर बहन अपने स्वरूप में आ गई। फिर बहन देख रही मैं कहां बैठी हूं। तो उसके बाद फिर वो चली गई आत्मा। फिर कुछ महीने के बाद वो भाई आया था जो उसके बहन के साथ में था दिल्ली वाला, फिर हमने पूछा था बोला अभी नहीं आती है। तो आत्माओं को ना प्यार चाहिए, अंत में आत्माएं आएंगी। बाबा ने कहा अपनी शक्ति से नहीं चल पाएंगी, तुमको अपनी शक्ति से चलाना है। तो जो भी हमको टाइम मिलता है हमको अपने आप को परमात्म शक्तियों से भरपूर कर लेना है। 1 सेकंड बाबा कहते बरसों के समान है, 1-1 सेकंड हमारा बड़ा कीमती है, लेकिन फिर भी माया ऐसी है घुस जाती है, 1 सेकंड क्या 1 घंटा ऐसे खा जाती है, सबको एक्सपीरियंस होगा। और माया किस रूप में आती है, सबके आती नहीं है, माया पास में है, किस रूप में वो तो सबको पता ही है, अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम फिर उसके वश में हो जाते हैं। अर्थात हमने परमात्म शक्तियों को अभी तक अपने आप में समाया नहीं है। क्यों नहीं हमारे समय पर हाथ वो रुक जाते हैं, क्यों समय पर हाथ हमारे अपने आप ही दूसरे 1 सेकंड में ब्राह्मण और टिकिया तो 2 सेकंड में सीधा शूद्र बन में चले जाते हैं। तो शक्ति कहां भरी, तो परमात्म शक्तियों को स्वयं में भरना है, परमात्म ज्ञान को। बताया ना रगो रग में रस रोम रोम में समा जाना चाहिए। ये जीवन बड़ा कीमती है, आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी और वो संस्कार तो निकलना शुरू हो चुके हैं। अभी अंत का एक पेपर होगा संस्कारों का टकराव, बाहर वालों के साथ नहीं अपने ही ब्राह्मण परिवार के साथ। यहां बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, अगर सामने से कोई बोलता है बस चुप रहो शांत। बाबा ने पिछले संडे की मुरली बोला था कहीं ना कहीं बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है, क्यों, चुप में ही सारा समाधान है, साइलेंस में ही सारा समाधान है। तभी तो कहते हैं 1 चुप 100 सुख, लेकिन हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं और वातावरण को और ही भारी कर देते हैं, उलझा देते हैं। वातावरण को शक्तिशाली बनाना ये सबसे बड़ी सेवा है। मुख की सेवा करना बड़ी बात नहीं है, क्लास कराना बड़ी बात नहीं है, भाषण करना बड़ी बात नहीं है, स्टेज पर जाना लाखों को संबोधित करना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेना। बाबा ने कहा नंबर किसके आधार पर मिलेंगे, धारणा के आधार पर मिलेंगे, भाषण के आधार पर नहीं, कितने को ज्ञान दिया उसके आधार पर नहीं, कितनों को डैश दिया उसके आधार पर, क्या कितनों को सुख दिया उसके आधार पर नंबर मिलेंगे, कितनों के जीवन को हमने निर्विघ्न बनाया, उनको भी छोड़ दे अपने जीवन को हमने कितना निर्विघ्न बनाया, दूसरे का जीवन अपने आप ही निर्विघ्न बनता जाएगा। अगर हम स्वयं ही विघ्नों के वश हैं तो उसमें भी हमको टेंशन नहीं लेना, उसकी अटेंशन देके हमको उनको निकलने का प्रयास करना है और जितना जल्दी हो सके उसमें से निकल जाने का है। नहीं तो वही विघ्नों के वश होने के संस्कार अगर पड़ गए तो अंत तक वही संस्कार हमको धोखा देते रहेंगे। बाबा कहते तुम हो निरंतर योगी, योगी हो योद्धे नहीं, पिछले संडे की मुरली में था ना, हो सहज योगी, अपने आप को क्या कहते हो, सहज योगी, लेकिन सारा दिन युद्ध चलता रहता है, अंदर में जंग छिड़ी हुई है, एक है संसार की जंग, लेकिन उस जंग को भी हमने अपने अंदर में समा के रखा हुआ है। यहाँ क्या यहाँ हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, ब्राह्मण परिवार में क्या हो रहा है, लौकिक परिवार में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या है, फलानी बहन कहाँ है, फलाना भाई कहाँ है, ये सारे हमने अंदर में बसा के रखे हुए हैं। बाबा कहते स्वयं को देखो, दूसरों को देखने का टाइम कहाँ है, स्वयं को झांको अपने अंदर में, हमने स्वयं को अभी तक कहां तक परिवर्तन किया है, स्वयं को हमने कितना वरदानी मूर्त बनाया। अगर हम स्वयं को हमने बंधनों में बांध के रखा है, उड़ान कब भरेंगे, ऐसे टाइम निकल जाएगा। और उसका पैमाना है, अगर हम सारे दिन स्वयं को अटेंशन रख के थोड़ा भी अपने को बंधनों से मुक्त रखने का प्रयास किया है, और उसका परिणाम जब हम योग में बैठेंगे तो हमारी बुद्धि एकदम क्लीन क्लियर होगी, नींद का भाव नहीं आएगा। मन में पहले से सारे दिन में थोड़ा थोड़ा चिंतन चलते रहना चाहिए, ज्ञान का पेट्रोल थोड़ा बड़ा भरा हुआ होगा तो आत्मा अपने आप ही बैठी और बॉडी से डिटैच। दूसरा कोई संकल्प नहीं चलेगा, जैसे बताया विश्व कल्याणकारी आत्मा, तो वही विश्व कल्याण के संकल्प चलेंगे। महसूस करेंगे हम कि सारे विश्व की आत्माएं मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, सर्व आत्माओं की पापों को भस्म करने के लिए मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, सबका कल्याण हो, वो वाइब्रेशन स्वतः हमारे से प्रभावित होते रहेंगे। उसके लिए संकल्प नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास है, प्रैक्टिकल है, लंबे समय का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस अपने आप ही काम करेगा। इसलिए जो भी हमारे अंदर में सोच है, संकल्प हमने भर के रखे हैं, अपने आप ही वो मुख से निकलते हैं बोल के रूप में, अपने आप से वो दृष्टि के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में निकल रहे हैं। इसकी जांच हम स्वयं को कर सकते हैं कि स्वयं के कर्मेंद्रियों पर हमारा स्वयं तक अभी कितना नियंत्रण है। अगर अभी भी कर्मेंद्रियां अनियंत्रित हैं, चंचलता है उसमें, तो हमने अभी भी काम नहीं किया है। इसलिए जितना भी समय बचा है, अब नहीं तो कब नहीं, अगला श्वास कब लेने को गारंटी नहीं है। अगर अभी शरीर छोड़ दिया, फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा, कितने साल ऐसे निकल जाएंगे, भरोसा है? फिर नया पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कब ज्ञान समझ में आएगा, फिर कहां जाना पड़ेगा, कैसा एटमोस्फेयर होगा। अभी इस आज के दिन को हमको सुधार लेना, कल का दिन अपने आप ही सुधर जाएगा। अभी वर्तमान मोमेंट, हम सोचते हैं या तो पास्ट की बातों को पकड़ के रखा हुआ है या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दोनों पार्टों के बीच में हमारा जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, इसको हम समाप्त कर देते हैं। जीना है नव। अगर हम इसी हॉल के अंदर बैठे हैं तो ये सोचना मैं भट्टी में बैठी हूं, होता क्या है, हम हैं मधुबन में और बुद्धि हमारी घर में लगी हुई है, घर में है बुद्धि मधुबन में लग रही है, उल्टा काम होता है। जहां है हम वही काम करने का, दूसरा कोई काम नहीं। भट्टी में बैठे हैं, भट्टी के बारे में ही सोचना है, अपने संस्कारों का चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है, योग के अभिनव नए प्रयोग करने हैं। जिस स्थान पर है वही काम करना है। ऐसे कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, कर्म में सफलता तभी मिलती है, उस कर्म को हम पूरी तन्मयता से, पूरे मनोवेग से, पूरी निष्ठा से करते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं उसमें, तभी सफलता हमारे हाथ में आती है। अगर हम बैठे हैं मेडिटेशन हॉल में और बुद्धि भाग रही है इधर उधर, तो भट्टी में आने का फिर औचित्य क्या है उसका। यहां अगर हमने भट्टी अच्छी तरह से कर ली, एक्सपीरियंस कर लिया, तो यहां से निकलने के बाद भी वही हमारे मन में गहरी शाप लग जाएगी। अगर यहां हमने मन बुद्धि को भटकाया, तो यहां से जैसे बाहर निकलेंगे तो बाहर की बातें ही हमारे प्रभाव मन बुद्धि को डालेंगी। तो जीना प्रेजेंट मोमेंट में है, इसलिए छोटे छोटे योग के प्रयोग करने हैं। देखना कि मैं बाबा के सामने बैठा हूं और वो ज्ञान सूर्य प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, वो ज्ञान सूर्य जैसे मेरे ऊपर आ गया है, और उस ज्ञान सूर्य की सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां, सारी पावर, वो सारी मुझ में समा गई हूं। जैसे उसके संस्कार हैं वही मेरे अनादि संस्कार, अभी मैं अनादि संस्कारों से पूरी तरह जागृत हूं, मैं जाग चुका हूं, मैं निरंतर जागती ज्योती हूं, उसके सारे संस्कार मेरे में हैं। जैसे वो संपूर्ण पवित्र है, मैं आत्मा भी संपूर्ण पवित्र हूं। जैसे उसकी दृष्टि सारे संसार पर रहम की दृष्टि घूम रही है, मेरी आंखें भी रहम से भरी हुई हैं, सारे संसार को रहम से पवित्रता के वाइब्रेशन दे रही हैं, सारे संसार को कल्याण के वाइब्रेशन दे रही हैं, सारे संसार को ऊंचा उठाने के वाइब्रेशन दे रही हैं, सारे संसार की आत्माओं में उमंग उत्साह का संचार कर रही हैं अपनी दृष्टि वृत्ति, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा, अगर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जाती है तो कहां से जाती है, आंखों से जाती है। ये जो इतनी आंखें बैठी हैं, इन सब की ऊर्जा कहां आ रही है, यहां आ रही है। आप सब की ऊर्जा कहां आ रही है, फायदा मुझको ज्यादा हो रहा है क्योंकि इतनी आंखें हमको देख रही हैं, तो ये आंखें बड़ी अनमोल हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अपने नयनों में स्वयं भगवान को समा के रखो। कोई पूछे बाबा कहां रहता, तो क्या बताना है, मेरे दिल में रहता है। प्रैक्टिकल अनुभव करना है कि उसकी सारी ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ रही है, वो मेरे दिल में बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में तभी तो सर्वव्यापी के वही संस्कार चालू होंगे, कहां से, अभी से हैं वो। सर्वव्यापी है नहीं है, लेकिन सबके दिल में बाबा जैसे समा गया हुआ है। इसलिए अंत में बाबा क्या कहते हैं, कोई भी अभी मुख से बोले तो क्या निकले मुख से, मेरा बाबा आ गया है। तो मुख से तभी निकलेगा जब हमने दिलाराम को अपने दिल में समा के रखा हुआ है। बाबा कहते हैं दिल कहां रहता है, आत्मा में है दिल। बाबा की परिभाषा तो अलग ही होती है ना, तो दिल आत्मा में है। तो ऐसे दिलाराम को अपने दिल में समा के रखेंगे तो दिल हमेशा हल्का रहेगा, और जितना हल्के रहेंगे उतना हम स्वतंत्र उड़ता पंछी बन सकेंगे। तो देखना है कौन कौन से ऐसे बंधन हैं, मन के सूक्ष्म बंधन। जो घर के स्थूल बंधन होते हैं वो कोई इतने भारी नहीं होते हैं, वो स्थूल बंधन हमारे पुरुषार्थ में बाधक नहीं है। हमने मन में सूक्ष्म बंधन तैयार करके रखे हुए हैं। वो कैसे, दूसरे के पार्ट को देख के प्रभावित हो जाते हैं। जिसका जैसा पार्ट है उसको वैसे ही स्वीकार करो, उसके छेड़छाड़ नहीं करो उसके पार्ट से। अभी जो मेरा पार्ट है, अब जितने में क्षमता है चलने की मैं उसी अनुसार चलूंगा। अगर आप मुझे बार बार कहेंगे ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, मेरे में क्षमता नहीं चलने की, तो मैं क्या करूंगा, प्रतिक्रिया करूंगा ना, मैं नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मेरे में क्षमता नहीं है। ऐसे ही जहां भी हम रहते हैं, घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, जिसमें जितनी क्षमता है वो उसी अनुसार चलेगा। हाँ, हमारे वाइब्रेशन, शुभ वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन, उनको निरंतर उनके मन तक पहुंचते रहें ताकि वो भी बंधनों से मुक्त हो जाएं। इसलिए बाबा क्या कहते, साक्षी स्थिति। कल का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था कल का, पूरा पूरा बताओ। साक्षी रहेंगे तो शांति का अनुभव होगा। हाँ, शक्ति और शांति का दान देना है तो कल था ना स्लोगन में साक्षी। हाँ, अभी तक तो पढ़ भी रहे हैं देखो। हाँ, वही तो बाबा ने कहा नकल यहां तो करनी चाहिए, जैसे देखा फटाफट देख लेना चाहिए उसी में। ये भी अच्छी आदत है एकदम, और वो जो याद करेंगे ना वो परमानेंट याद रहता है फिर। हाँ, यहां नकल करने के लिए बाबा ने तो खुली छुट्टी दी है, ज्ञान की नकल करने, इससे तो हमारा कल्याण ही हो रहा है ना। तो ऐसे हमको स्वयं को देखना है कौन कौन से ऐसे बंधन है, तो उनसे हमको छूटने का प्रयास करना है। और उड़ता पंछी अर्थात फरिश्ता, फरिश्ता कहां रहता है, उसका देह के संबंधों में अटैचमेंट नहीं होती, डिटैच रहता है एकदम। तो स्वयं की देह से बार बार डिटैच होने का प्रयास करना है। अभी सभी एक सेकंड में बैठे बैठे सीधा शरीर को छोड़ दो यहीं, और सीधा शांति धाम बाबा के पास पहुंच जाइए। बाबा सामने जगमगाती ज्योति है, सारी शक्तियां उससे निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा बाबा से सारी शक्तियां लेकर फिर वापस अपनी देह में वृक्ष सिंहासन पर विराजमान, फिर मैं अपने सिंहासन को छोड़कर सीधा शांति धाम, फिर वापस अपनी देह में, फिर सीधा शांति धाम, फिर वापस अपनी देह में, फिर शरीर को छोड़कर सीधा शांति धाम, फिर वापस अपनी देह में, अब अपने देह को छोड़कर सीधा अपने लौकिक स्थानों पर जहां परमात्म शक्तियों की मैं दृष्टि दे रहा हूं, वाइब्रेशन से वातावरण को शुद्ध कर रहा हूं, मधुवन के चारों धाम के वाइब्रेशन मुझ आत्मा में भर गए, और सीधा मैं सेवा केंद्र को मधुवन के चारों वाइब्रेशन से भरपूर कर रहा हूं, मधुवन के चारों धाम के वाइब्रेशन से लौकिक घर को भरपूर कर रहा हूं, अपने संबंध संपर्क में आने वालों को भी चारों धाम के वाइब्रेशन से भरपूर कर रहा हूं। जैसे मेरी वृक्ति ही चारों धाम है, जैसे मैं स्वयं ही मधुवन हूं। ओम शांति। तो मधुवन कहां है, यहां स्वयं मैं मधुवन हूं, नया सोमा नए। जैसे मैं सोचूंगा मैं मधुवन हूं तो क्या आएगा मन में, पूरा मधुवन घूम जाएगा, शांतिवान ज्ञान सोर सारा मधुवन यहां है। दादी जानकी जी कहते थे शांति धाम कहां है, ऊपर नहीं, इतने वर्षों से याद करते शांति, मेरी वृक्ति ही शांति धाम बन गई है, सारी एनर्जी इधर है, वो शांति स्तंभ की सारी एनर्जी इधर है, वो हिस्ट्रियाल की सारी एनर्जी इधर है, कुटिया की सारी एनर्जी इधर है, बाबा के कमरे की सारी एनर्जी इधर है, वृक्ति ही मधुवन बन जाए। जैसे मधुवन के प्रति कितना आकर्षण होता है सभी को, अगर हम चलते फिरते सोचेंगे कि मैं चलता फिरता मधुवन हूं तो सबका आकर्षण होगा, वो सारी एनर्जी सबको फील होगी। तो स्वयं को एनर्जी से खेलना है, प्रकृति की एनर्जी। थोड़ा टाइम मिले थोड़ा प्रकृति में एकांत में बैठना है, जहां पंछियों की आवाज हो, मन को एकाग्र करने का तरीका है, वो सारी एनर्जी भी स्वयं में भरपूर करनी है। प्रकृति को साकार, प्रकृति से बात नहीं करनी है। बाबा ने कहा प्रकृति को पावन बना ले वाले तुम बच्चे हो, संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रकृति को पावन बना सके, तुम आत्मा ही प्रकृति और आत्माओं को पावन बनाने का सामर्थ्य तुम आत्मा में, वो किसी में नहीं है। तो ये सारी सूक्ष्म सेवाएं, इसके लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। हमारा घर ही जैसे मधुवन के वाइब्रेशन से भर जाए। हम एक जगह अभी नेपाल में गए थे, एक बुजुर्ग माता थी उनके घर में गए सेवा केंद्र से, तो देखा उनका जो छोटा सा कमरा, ऐसे लग रहा था जैसे सचमुच कुटिया है एकदम, इतना उसका बाबा के प्रति प्यार, इतनी स्वच्छता वहां, वो उसी तरह से पर्दे लगे हुए और सचमुच लग रहा था कुटिया जैसे इधर है। तो बाबा ऐसे बच्चों को प्यार करता है, जो हमारी नजरों में कि आगे जाएंगे बाबा की नजरों में कोई और ही होंगे। हम मधुबन में देखते थे मधुबन निवासी बुजुर्ग बुजुर्ग जिनको कोई जानता भी नहीं होगा, इतने प्योर वाइब्रेशन, कभी उन्होंने भाषण नहीं किया, अपनी सेवा में व्यस्त, और इतने प्योर पावरफुल वाइब्रेशन, इतना अपनेपन का एहसास, कभी परचिंतन नहीं किया, कभी किसी को देखा नहीं, कभी शोबाजी करने की जरूरत नहीं। तो हमारी नजरों में कोई और ही होता है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि जो घर में रहने वाली बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं हैं वही सबके आगे बैठी हुई वहां जाके। इसलिए बाबा क्या कहते, वंदे मातरम, ऐसे थोड़ा गायन है वो, तो माताएं बाजी मार जाएंगी लेकिन भाई भी पीछे थोड़ा रहेंगे, साथ में चलेंगे, चिंता नहीं करो। बाबा कहते मैं अनेक लड़ियां लगा दूंगा, है ना। बाबा तो कहते हैं सब एक दो से आगे बढ़कर हैं, तो मैं सब ऐसे बाबा के वरदानी बच्चे हैं। हमेशा स्वयं को भरपूर रखना है, एनर्जी से भरपूर, परमात्म शक्तियों से भरपूर, खुशी से भरपूर। सबसे बड़ी खुराक है खुशी, और खुशी बिना ज्ञान के, बिना योग के नहीं मिलेगी, बिना सेवा के नहीं मिलेगी। जो भी सेवा हमको मिलती है उस सेवा को भी योग में बदल देना है। कई बार ऐसे भी होता है कि सेंटर में हमको सेवा मिलती है तो हम सोचते हैं हमको रोज रोज सेवा मिलती रहती है, योग कब करेंगे। बाबा ने कहा योग के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे मन की अवस्था है। अगर हमारे मन पसंद सेवा मिल जाती है तो हम कैसे हां कर देते हैं। मुरली में आता ना बाबा ने, और मनपसंद सेवा नहीं होगी तो बोलेंगे मेरा पेट दुख रहा है। अब पेट दुखने का टेम्परेचर तो कोई है ही नहीं, बाबा ने को थर्मामीटर तो कोई है नहीं, उसको कैसे मापेंगे। जो भी हमको सेवा मिलती है, चाहे वो बाथरूम सफाई करने की सेवा है, परम सौभाग्य है वो, क्योंकि वहां बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। ये सोचो मैं आत्मा अपनी, मैं स्वयं की स्वच्छता के लिए मुझे ये मौका मिला है। और सचमुच जो सेवा मिलती है अगर सच्चे मन से दिल से पूरे लगन से कर देते हैं, जो वो संतुष्टता मिलेगी उतना योग से भी संतुष्टता नहीं मिलती है। इसलिए जो भी हमको सेवा मिले ये तो भाग्य है, लॉटरी मिलती है हमको, जो हमारा भाग्य हमको पुकार के लाता है। तो ऐसे दीदियां दादियां जो भी सेंटरों में सेवा मिलती है, आंखें बंद करके निश्चिंत, उसके ऊपर क्यों क्या टीका टिप्पणी नहीं करनी। अगर वो दिखता सेवा गलत है कर दो, क्योंकि उसमें जिम्मेवारी किसकी है, निमित्त आत्मा की है। बाबा ने कहा निमित्त जिसने बनाया वो संभाल लेगा अपने आप। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा नहीं कहते शिव बाबा कि अगर इससे गलती होती है तो मैं संभाल दूंगा ठीक कर दूंगा। तो जो भी हमको सेवा मिलती है आंखें बंद करके कर देनी है। अगर हम टीका टिप्पणी में तर्क वितर्क करने में लगेंगे तो टाइम हमारा ऐसे वेस्ट चला जाएगा, और वो ही हमारे संस्कार फिर पड़ जाएंगे। हर बात में हम फिर तर्क वितर्क करेंगे, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। कई बार ऐसे होता है कि वो सेवा दिखती है गलत है उस समय, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है वो ही सेवा ठीक थी, क्योंकि हमारी बुद्धि एक कालदर्शी होती है। बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी बनो, त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हो तीनों कालों को देकर। तो जो भी हमको मौका मिलता है मौके को जाने नहीं देना है, मांगना नहीं है सेवा, सेवा अपने आप मिलेगी। मांगना तब पड़ती है जब हम सेवाओं को छोड़ देते हैं, आनाकानी करते हैं, अपनी पसंद की सेवा ढूंढते हैं, तो वो सेवा मांगना भी क्या कहते हैं बाबा कहते भिखारी बना है। संडे की मुरली में ना चांस नहीं मिलता, चांस तो हमारे पीछे अपने आप आएगा। अगर हमारे में विशेषता है तो चांस ढूंढने की जरूरत नहीं है। और विशेषताएं कब भरेंगी, जब हम हां का पाठ पक्का करेंगे, हां जी का पाठ। अगर हमने मना करना कर दिया तो मना करने से ना करने से तुरंत नकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। हां कर देंगे कोई काम नहीं भी आता है, वो काम कराने के लिए बाबा हां कर दे तो अपने आप एनर्जी बढ़ेगा, अपने आप योग्यता बढ़ेगा। सभी अपने अपने अनुभवों से अवगत हैं हमारे में क्या विशेषताएं थी, ज्ञान का क भी नहीं बोलने आता था, लेकिन अभी तो सब कितना जीवन में परिवर्तन हुआ। अपने ब्राह्मण जीवन के आदिकाल से देखिए और अब तक जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, किसकी ताकत है, किसके वरदान मिल रहे हैं, ऊपर वाला अपने आप ही कर रहा है। हमारी क्या बिसात थी इसमें, वो सब कुछ कर रहा है। इसलिए जो भी हमको मौका मिला हां जी कर दो। जैसे अभी हमको बहन जी ने बोला, 5 मिनट पहले बोला, हम तो एक न्यूज बना रहे थे अभी ज्ञान सो में जो प्रोग्राम चल रहा है, तो सारा बुद्धि सारी उधरी लगी थी एकदम। तो बहन जी ने बोला अभी आना हमको, तो हमने बोला ठीक है आते हैं फिर, तो वहीं पहुंच करके तुरंत आगे हमने सोचा नहीं अभी, कराने वाला ऊपर है, भाग्य आपका है, जो भाग्य हो उसको बनाना है आपका, अपने आप बनाएगा। निमित्त बन के बैठ जाओ, अपने आप कराने वाला वो है। तो कर्ण करावन हार वो है, अगर हमको ये स्मृति रहती है तो हम इस जीवन में निर्विघ्न रूप से कोई भी बंधन जो हमारे बंधन अपने आप काट जाते हैं। बाबा ने कहा अगर बंधनों से छूटना है तो अपने आप को ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध दो, सारे बंधन अपने आप खलास हो जाएंगे। घरों में माताएं थी, कितनी बंदेलियां थी, लेकिन ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध दिया। अगर अभी वही बंदेलियां हम सबके लिए कई एग्जाम्पल हैं, कई माताएं हैं जिन्होंने सेंटर में सेवा को अपने आप को जीवन में जीवन को समर्पित कर दिया। एकदम टीचर बहन का बैज मिला हुआ, कैसे मिला वो, हां किया उन्होंने, हां किया, इसलिए वो टीचर बहनों के समान बन गए माताएं भी। आज सेंटरों में बड़े बड़े सेंटर चला रही है, हमने देखा नेपाल के राज बहन जी, गंगा बहन जी थे, ऐसे भारत के भी, हां किया ना, निकल गए। कमलेश दीदी कटक वाले, कितने सब माताएं हैं ये, लेकिन टीचर बहन है जोन इंचार्ज बनी हुई है, कैसे, हां किया। जब भी हमको मौका मिलता, थोड़ी सी सेवा मिलती है, हां कर दो, सहयोगी बनो, ब्राह्मणों के सहयोगी बनना है, से बाबा की सेवा में मददगार बनना है, इससे बड़ा पुण्य और क्या है। तो सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, हमारी सोच छोटी बड़ी हो जाती है, ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है, नहीं, कभी संकल्प ही नहीं चलाना है। अगर कोई सेवा को हमारे से कोई दूसरे को आगे रख रहा है, मान लिया हमारे में योग्यता है और जिसको आगे रखा जा रहा उसमें योग्यता नहीं है, उसको देख के भी खुश रहना है, ये नहीं सोचना है कि ये इसके जाने से सेवा खराब हो जाएगी। जिसने उसको सेवा पर भेजा है उसके प्रति भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, क्योंकि वो हमारे परिवार का है, हमारा भाई है। पहले बताया था ना, अगर बेटा कलेक्टर हो और पिता SDM हो तो पिता को क्या होगा, खुशी होगी या दुख होगा, खुशी होगी ना। तो ऐसे हमारा ब्राह्मण परिवार है, हमारा क्या संस्कार है, सबको एक दो को आगे बढ़ाने के। अगर थोड़ा सा भी हमने सोच लिया ये मेरे से आगे क्यों जा रही है या जा रहा है, हमारा पुरुषार्थ वहीं रुक जाएगा। जेलसी, घृणा, छोटे छोटे संस्कार जो हैं, जो भूत बनकर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, कब फिर उड़ान भरने देंगे हमको, वो ईर्ष्या की भावना आ जाती है, क्योंकि हमने स्वयं के प्रति ईर्ष्या करके रखी है। नंबर कट जाएंगे, पत्ता ही साफ हो जाएगा एकदम। और नंबर कटे ना कटे, सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो आघात होगा स्वयं के ऊपर, हमारी खुशी खर नष्ट हो जाएगी। उतना समय हम शुभ आवेश, अरे अपना परिवार है, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया अपना परिवार, अगर एक्सेप्ट किया होता तो उसको आगे बढ़ाने में हमारा संकल्प नहीं चलना चाहिए। अपना परिवार अगर एक्सेप्ट किया है, हमारा अगर कोई भाई बड़ा मिनिस्टर बन जाए, बड़े औहदे पर चढ़ जाए, कितनी खुशी होती लौकिक में। तो यहां क्यों नहीं ऐसे होता है, एक्सेप्ट नहीं किया है, परिवार में निश्चय की कमी है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं में निश्चय, परिवार में निश्चय, बाबा निश्चय, ड्रामा में निश्चय। निश्चय बड़ा महीन है ये, निश्चय के पांव कब डगमगा जाते हैं, यथार्थ निश्चय बताया था संडे के मूल्य भाव ने। केवल वातावरण को देख के प्रभावित नहीं, ज्ञान है, अंडरस्टैंड, हर बात की समझ है कि एक एक आत्मा भगवान के चुने हुए रत्न है, साधारण नहीं है। पता नहीं इस सभा में कौन सी आत्मा ऐसी बैठी होंगी भोली भाली, जिन आत्माओं के वाइब्रेशन से हमारे जन्म जन्म के विक्रम भस्म हो गए होंगे, उनका हमको पता नहीं चला है, लेकिन वो हो गए होंगे। हो सकता उन आत्मा को वो एक बुजुर्ग माता होगी जिसके कारण हम आत्मा निर्विघ्न बन जाए। जैसे बताया ना, एक बस जा रही थी, ऊपर से बिजली, आकाशमान से बिजली गरज रही थी जोर जोर से, तो बीच में सवारियां सोचने लगी पता नहीं कौन सा ऐसा मनहूस बैठा हुआ इसमें जो बिजली इसके ऊपर आ रही है। लेकिन जैसे वो आत्मा, एक आत्मा उससे उतरी और वो सारी खत्म होगी, मनुष्य नहीं थी वो आत्मा, उसी के कारण वो बचे हुए थे। जब तक वो बस के बीच में थी सब बचे हुए थे, जैसे वो निकली विनाश हो गया। तो ऐसे हम साधारण आत्मा नहीं है, किसी के पहनावे को देख के ये नहीं सोचने तो साधारण आत्मा है, गांव की आत्मा है, ऐसे भाई है, नहीं। एक एक आत्मा यूनिक है अपने आप में, भगवान की दृष्टि ऊपर पड़ी है, भगवान के वरदानों से भरपूर है। हम केवल चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, हम केवल थोड़े समय के लिए देख रहे हैं, लेकिन उनका जो दूरगामी बाबा की जो दृष्टि है वो हमारे में थोड़ी नहीं है। इसलिए हर एक को सम्मान देना है। भगवान ने जिनको सबको सम्मान दिया उनको हम अगर अपमान करें कितना बड़ा पाप है ये। जिनको रोज भगवान आके कह रहा है तुम मेरे सिर के ताज हो, तुम मेरे बच्चे हो, नए नए को न्यूरो स्किल दे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, और हम तो कह रहे हैं ये भाई ऐसे है, फालतू है, कितनी बड़ी डिसर्विस हो गई सारी, कितनी बड़ी ग्लानी। माना भगवान की शिक्षा के ऊपर हमने उंगली उठा दी, कितना बड़ा बोझ चढ़ जाता हमारे ऊपर। तो बोझ तो हम खुद ही क्रिएट करते रहते हैं। तो टाइम भी हो गया, ऊपर हो गया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।